नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और आज आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दिव्या तोमर। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ प्रेम प्रकाश। प्रेम, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद दिव्या।
और आइए अब जानते हैं खेल जगत की मुख्य खबरें। यूरो कप फुटबॉल चैंपियनशिप आज से शुरू। ग्रुप ए में स्विट्जरलैंड 3-1 से जीता और ग्रुप बी में स्पेन और क्रोएशिया आमने सामने होंगे। इटली में एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में सुमित नांगल सेमीफाइनल में और पुरुष डबल्स में भारत के एन श्री राम बालाजी और जर्मनी के आंद्रे बेगेमन की जोड़ी फाइनल में पहुंची। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला कनाडा से। आखिरी ओलंपिक क्वालिफायर में भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 24 टीमों के साथ एलिमिनेशन दौर में प्रवेश किया। दोस्तों, फुटबॉल के मिनी विश्व कप की आज से शुरुआत हो चुकी है और फुटबॉल का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट देखा जाता है प्रेम फीफा के बाद, और फुटबॉल प्रेमियों में इसका बड़ा बहुत ज्यादा क्रेज रहता है। तो अभी क्या कुछ चल रहा है?
बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम लोग बात करें फीफा वर्ल्ड कप के बाद, तो ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें जैसा कि आपने बताया कि यूरोप की जो टॉप की 24 टीमें हैं वो भाग लेती है। और निश्चित रूप से बहुत सारी टीमें हैं जहां पे स्पेन है, जर्मनी है, इटली है, और यहां तक कि कयास लगाए जा रहे हैं कि रोनाल्डो शायद उनका आखिरी कॉन्टिनेंटल गेम हो सकता है अपने देश की जो है जर्सी में। तो बहुत सारी चीजें हैं, आज से शुरू हुआ है, देखते हैं। बहुत सारे जैसे जर्मनी जैसी टीम के लिए उनका होम ग्राउंड है और 2014 में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप भी जीता है। हाँ। तो बहुत सारे दावेदार तो यहां पे हैं, लेकिन देखते हैं मैच दर मैच किस तरीके से चीजें बदलती
हैं। बिल्कुल, आपने रोनाल्डो की बात की और रोनाल्डो पर इस बार फैंस की नजरें लगी हुई है, क्योंकि रोनाल्डो जो है स्टार स्ट्राइकर हैं और पुर्तगाल के एक बेहतरीन फुटबॉलर हैं। अभी ताजा समाचार मिलने तक फुटबॉल चैंपियनशिप में ग्रुप ए में हंगरी और स्विट्जरलैंड का मैच चल रहा था, जिसमें स्विट्जरलैंड ने 3-1 से जीत दर्ज की है। तो स्विट्जरलैंड की टीम को आप कैसे देखते हैं कि कितनी मजबूत रही हंगरी पर, कैसे कहीं ना कहीं उसने बढ़त ली?
देखिए, अभी तो शुरू हुआ है आज से और बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत सारे उलटफेर होने की भी संभावना देखी जा सकती है। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आप शुरुआती मैच में ही अपने ओपोनेंट टीम को एक गोल पर रोक देते हैं और आप उस पर 3 गोल करके विजय पाते हैं, तो निश्चित रूप से एक इस फॉर्मेट की एक बड़ी टीम का कॉन्फिडेंस और लाजवाब होगा। जो बहुत सारे मैचेस उनके आने वाले हैं वहां पे वो हो सकता है अपने इस प्रदर्शन को इसी लय में रखने की कोशिश करेगी।
जी बिल्कुल प्रेम, अभी ये तो बात हुई स्विट्जरलैंड और हंगरी की, और अगला जो मैच है ग्रुप बी में स्पेन और क्रोएशिया का है, और स्पेन अपने आप में बहुत मजबूत टीम है क्योंकि स्पेन लगभग 3 बार जीत चुकी है फीफा यूरो कप। और तो ऐसे में अब स्पेन और क्रोएशिया के मुकाबले को कैसे देखते हैं?
देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी टीम है स्पेन के लिए। कहा जाता है कि 2008 से 2012 के बीच लगातार 3 इंटरनेशनल खिताब जीते हैं, जिनमें 2 यूरो और 1 वर्ल्ड कप था। लेकिन उसके बाद से स्पेन के प्रदर्शन में लगातार गिरावट देखी गई है। हालांकि 2023 में जो है उन्होंने यूईएफए नेशंस लीग जीती, जिसमें उन्होंने क्रोएशिया को ही हराया था। तो मुझे लगता है कि अब 2024 में वो यूरो कप खेल रहे हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस उसके साथ रहेगा कि बीच का जो दौर था, वो जो उनके खेल में गिरावट आई, वहां 2023 में उसी ओपोनेंट टीम को हराया जिससे आज उनका मुकाबला होने वाला है। तो निश्चित रूप से कहीं कहीं उनका एक कॉन्फिडेंस यहां पे काम आएगा।
और ग्रुप बी में भी देर रात को इटली का मुकाबला अल्बानिया से होगा। इससे पहले म्यूनिख में कल रात जर्मनी ने उद्घाटन मैच में स्कॉटलैंड को 5-1 से पराजित किया। यूरोपियन चैंपियनशिप के पहले मैच में ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है, इस जीत पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, जर्मनी बड़ी टीम है, 2014 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है और घर में जो वो मेजबानी कर रहे हैं, तो घर में जिस तरीके से ये इवेंट हो रहा है तो उसका निश्चित रूप से उनको फायदा मिलेगा। हालांकि मैं एक बात हमेशा कहता हूं, स्पोर्ट्स कैन में भी कई बार कहता हूं कि गेम में कोई भी टीम आज अभी फिलहाल जो मतलब दौर चल रहा है इसमें कोई भी टीम एक छत्र राज जैसा कुछ नहीं कर सकती। जिस तरीके से हम आगे टी20 पे भी बात करेंगे कि बहुत सारी टीमें हैं जो उलट कट फेर का शिकार हो जाती है, लेकिन जर्मनी बड़ी टीम है और वो मेजबानी कर रही है तो उसका निश्चित रूप से उनको एक फायदा मिलेगा।
बिल्कुल, और ये टूर्नामेंट 15 जून से 15 जुलाई तक खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज के मैच 26 जून तक खेले जाएंगे। वहीं नॉकआउट चरण 29 जून से शुरू होगा। कल पोलैंड और नीदरलैंड का मुकाबला शाम 6 बजे देखने को मिलेगा। वहीं स्लोवेनिया और डेनमार्क के बीच भिड़ंत रात 9:30 बजे होगी। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला कनाडा से, बारिश की वजह से देरी से होने की संभावना है। अब तक क्या अपडेट है फ्रेम?
देखिए, भारत की अगर बात करें तो भारत जो है ग्रुप 8 में ऑलरेडी जा चुका है, और इनफैक्ट जो ग्रुप ए है जिसमें भारत है, वहां से भारत और यूएस दोनों टीमें, यूएस की टीम को हमको पता है कि पहली बार जो है किसी ऐसे आईसीसी की चैंपियनशिप खेल रही है और वो पहली बार में ही ग्रुप 8 वाले स्टेज में पहुंच चुकी है। तो भारत वाले ग्रुप से दोनों टीमें आगे के स्टेज के लिए पहुंच चुकी है, और ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है, दूसरी टीम का हमें इंतजार है। ग्रुप सी में भी जो है वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं, और ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका जो है पहुंच चुकी है, उसके अलावा एक टीम का हमको इंतजार है। आज का जो मैच है इंडिया का कनाडा के साथ, पहला T20 दोनों के बीच में होना था, लेकिन क्योंकि वहां की वेदर कंडीशंस हमको ऑलरेडी पता है, बहुत सारी बारिश या बहुत सारे इस तरीके के जो है व्यवधान मैच में आते रहे हैं पहले भी, तो वैसा ही अभी है। अभी मैच शुरू नहीं हो पाया है बारिश के कारण, जैसा कि वेदर की फोरकास्ट में भी पहले से बताया हुआ था। लेकिन बहुत ज्यादा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो रिजल्ट पे कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है।
लेकिन जैसे प्रेम, ब्रूलैंड काउंटी स्टेडियम की जो पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें, तो पिछले 16 में से 11 मैच में देखा गया है कि जो भी टीम बल्लेबाजी करने उतरती है पहले, उसके पक्ष में कहीं ना कहीं ये मैच रहता है। तो
देखिए, मुझे लगता है कि वो जो वेदर कंडीशन है उसी का कारण है, इसीलिए कोई भी टीम यूजुअली टॉस जीत के बल्लेबाजी करना चाहती भी है, ये भी एक वहां पे है। और जैसा हम देख रहे हैं इस पूरे दौरान, जैसे अभी जो मैचेज हुए लीग स्टेज के, वहां पे स्कोर बहुत कम रहे हैं, बहुत लो स्कोरिंग मैचेज रहे हैं, और बहुत ऐसे नई टीमें भी, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई नई टीम है या कोई पुरानी टीम है, जिस तरीके के उलटफेर हुए, यूएस ने पाकिस्तान को हराया, तो वहां वेदर एक बहुत बड़ा वो है। दूसरा जो हम कारण देख सकते हैं कि ज्यादातर जो अभी जैसे यूएस में मैचेज हो रहे थे, तो पिचेज से लेके ग्राउंड से लेके सब कुछ जो है मॉड्यूलर ढंग से वहां पे बनाया, जैसे पिचेज कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया से बनके और वहां पे मॉड्यूल की गई, वहां पे इंस्टॉल की गई, तो वो भी एक कारण था शायद इस चीज का, कि इसीलिए शायद ये रहा कि टीमों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, कि भारत बहुत बड़ी टीम है या साउथ अफ्रीका बहुत बड़ी टीम है।
लेकिन भारत की अब तक की जैसे परफॉर्मेंस है, भारत ने अब तक 8 मैच खेले हैं, और तो उनके हिसाब से आप भारत की परफॉर्मेंस को कैसे आकलन करते हैं?
देखिए, निश्चित रूप से अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं बात करूं भारत की टीम की, तो भारत की टीम आज के दौर में जो टीम है वो बहुत लाजवाब टीम है। मुझे ऐसा लगता है लॉर्ड्स में दादा ने, सौरभ गांगुली ने जो एक लेगेसी शुरू की थी, उस लेगेसी को एज इट इज धोनी ने बहुत अलग पीक पे पहुंचाया, और अभी विराट कोहली से होते हुए जिस तरीके से रोहित शर्मा टीम को लीड कर रहे हैं और जिस तरीके के प्लेयर्स अभी हमारी टीम में है, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत लाजवाब टीम है। मैं कहूं कि नंबर एक टीम है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि प्रदर्शन कई बार होता है, जैसे अभी 2-3 मैचेस से विराट कोहली बहुत कुछ अपना दे नहीं पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वेदर और तमाम सारी चीजें इसलिए, बट आगे के मैचेस में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि विराट कोहली अपना जो लय, जिस लय में आईपीएल खेल रहे थे और जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो प्रदर्शन में वापस आएंगे।
और भी खिलाड़ी जो है, आप भी के जो वेदर कंडीशंस हैं और जो पिच की कंडीशंस हैं उसको देखते हुए, भारतीय टीम को कौन से कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है, आप क्या कहेंगे उस पर?
देखिए, जो टीम जब खेलती है, कैप्टन जो है, कैप्टन को या मैनेजमेंट को, जिसकी हम बात करें, जिस तरीके के प्लेयर्स है कि भाई वेदर अगर हमको कहां स्पिनर्स की जरूरत है, कहां बुमराह को लेके आना है, और ये मैनेजमेंट अभी तक के मैचेज में हम लोगों ने रोहित शर्मा का बहुत अच्छा देखा है, कि वो उसको पता है कि अर्शदीप को कहां खिलाना है, उसको पता है कि बुमराह को किस जगह पे लेके आना है। तो मुझे लगता है बहुत कुछ बदले बिना यही जो रणनीति रोहित शर्मा की अगर चलती रही, तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी।
सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करने के लिए रात 10:30 बजे से इंग्लैंड और नामीबिया आमने सामने होंगे। इससे पहले आज सवेरे वेस्टइंडीज के किंग्सटाउन में दक्षिण अफ्रीका ने नेपाल को रोमांचक मुकाबले में केवल 1 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 115 रन बनाए। जवाब में नेपाल की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 114 रन ही बना सकी। इस बीच अमरीका की टीम ने सुपर आठ चरण में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। लॉडरहिल में अमरीका और आयरलैंड का मैच रद्द होने से अमरीका को सुपर आठ में पहुंचने का मौका मिला। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने रूस के कजान में चल रहे 2024 ब्रिक्स गेम में कांस्य पदक जीतने के लिए भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम को हार्दिक बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मांडविया ने इस उपलब्धि की सराहना की क्योंकि ये आयोजन में भारत के लिए पहला पदक है। उन्होंने कहा कि टीम ने देश को गौरवान्वित किया और साथ ही भविष्य के सभी प्रयासों में उनकी निरंतर सफलता की कामना भी की। टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल इटली में एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में सेमीफाइनल में पहुंच गए। सुमित ने कल क्वार्टर फाइनल में पोलैंड के मैक्स कास्निकोवस्की को हराया। और वहीं इसी टूर्नामेंट के मिक्स डबल पुरुष डबल्स में भारत के एन श्रीराम बालाजी और जर्मनी के आंद्रे बेगेमैन की जोड़ी फाइनल में पहुंच गई है और अब ये ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर गए हैं। तो इसके साथ में मतलब कैसे देखते हैं इन खिलाड़ियों को, हमारे लिए कितने पदक लाने की उम्मीद दिखती है?
देखिए, पिछले 10 साल में हम लोग देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से एक स्पोर्ट्स कल्चर, मैं कहूंगा एक खेल संस्कृति का विकास हुआ है, जहां पे गवर्नमेंट के भी बहुत सारे एफर्ट्स हैं और हमारे एथलीट्स जो है उनके भी बहुत सारे एफर्ट्स हैं। अगर उस प्वाइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो निश्चित रूप से जैसे एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स में हमने रिकॉर्ड मेडल्स जीते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी मुझे लगता है कि इसी पे अब हमारा फोकस भी है, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो चाहे हमारे एथलीट्स हो। और निश्चित रूप से सुमित नांगल का यहां जो बेहतरीन प्रदर्शन है वो उनको अभी आने वाले ओलंपिक्स के लिए और ज्यादा बूस्ट करेगा उनको कॉन्फिडेंस। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले जहां हम बहुत सारे ऐसे टीम इवेंट्स वगैरह में मेडल्स लाते थे, वहां अब कहीं सिंगल्स डबल्स इस तरीके की भी जो गेम्स हैं वहां से भी मेडल्स लाने में कामयाब होंगे। और अगर मेडल्स हम ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म से लेके आते हैं तो निश्चित रूप से गौरवान्वित करने वाली बात है।
और इस बीच अखिल भारतीय टेनिस संघ ने पेरिस ओलंपिक में पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना और एन श्री राम बालाजी की जोड़ी के खेलने की पुष्टि कर दी। साथ ही G7 में इटली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात कर उन्हें महीने में होने वाले पेरिस ओलंपिक के आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। पेरिस ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से यानी अगले महीने से शुरू होने वाला है और 11 अगस्त तक फ्रांस की राजधानी में इसका आयोजन किया जाएगा। 2024 ओलंपिक में करीब 100 भारतीय खिलाड़ियों ने अभी तक क्वालिफाई कर लिया है और इस महीने के अंत तक इसमें इजाफा होने की उम्मीद है। भारतीय दल में 21 निशानेबाज शामिल होंगे। क्या लगता है इस बार पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन किस तरीके से रहेगा और कितने मेडल्स हम ला पाने में सक्षम होंगे?
देखिए, मुझे लगता है कि बहुत हेल्दी कंपटीशन हिंदुस्तान में इस चीज को लेकर शुरू हो चुका है और उसके पीछे जैसे अभी आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया तो प्रधानमंत्री जी और पूरी गवर्नमेंट का, हमारे जो खेल मंत्री है, उन सबका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि चाहे मेडल जीतते ही पिछले ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में हमने देखा, मेडल जीतते ही प्रधानमंत्री खुद जो है प्लेयर्स को फोन करते हैं और जाने से पहले और आने के बाद उन लोगों की वेलकम पार्टी रखते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है, खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाने वाली बात है। ऐसा अगर कोई देश का प्रधानमंत्री करता है तो खिलाड़ियों में अपने आप एक हेल्दी, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो है वो आती है और मेडल लाने के लिए वो लालायित होते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन की जा सकती है।
और इस बीच एक दुखी खबर भी है। अपने 4 दशक से अधिक लंबे करियर में भारतीय खेलों के कई उतार चढ़ाव को कवर करने वाले अनुभवी खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को निधन हो गया। वो 72 वर्ष के थे। लंदन ओलंपिक में भारतीय प्रेस अताशे के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले बेदी को भारतीय खेलों के अपार ज्ञान के साथ अपनी वाक्पटुता, गर्मजोशी और व्यंग से मीडिया बॉक्स को मंत्रमुग्ध करने के लिए जाना जाता था। आकाशवाणी परिवार खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और तुर्की के अंताल्या में आखिरी ओलंपिक क्वालिफायर में भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम ने एलिमिनेशन दौर में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए हमारी पूरी टीम को स्पोर्ट्स कैन की। और प्रेम, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद दिव्या,
नमस्कार।